नारद जी व्यास जी को अब उनका विश्वास बढ़ाने के लिए या उनके माध्यम से हम सबका विश्वास बढ़ाने के लिए नारद जी अपने चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी वैष्णव हमेशा उनका स्वभाव होता है कि वो पूर्व के किसी आचार्य को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सूत गोस्वामी जब शौनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं तो वो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का संवाद सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में जो संवाद है उसको सुनाते हैं, या आगे जाकर हम महाराज युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में प्रसंग का वर्णन उसको सुनाते हैं। इस तरह से आचार्यों का स्वभाव होता है कि वो अपने बारे में कुछ ना कहते हुए पूर्व के आचार्यों के बारे में कहा कहते हैं, उनकी बात को रखते हैं अपने बारे में। यदि भी वो सिद्ध होते हुए भी उनकी उनमें इतनी नम्रता होती है कि वे अपने बारे में नहीं कहते। लेकिन यहाँ पर नारद जी वो सारे एटिकेट्स को छोड़कर नारद जी वेदव्यास जी को वेदव्यास जी के माध्यम से हम सब पर कृपा करते हुए नारद जी ऐसे कैसे बने, कैसे नारद जी को ऐसा वीजा मिल गया जिससे कि वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में या तीनों सारे सारे ब्रह्मांड में बिना रोक ठोक के आ जा सकते हैं। तो ये ऐसा वीजा कैसे मिल गया उनको, ऐसी सामर्थ्यता कैसे आ गई। वो नारद जी भी जीव है, भगवान तो सत्यगेश अवतार है, भगवान का एक जीव है। सत्यगेश अवतार का अर्थ है कि जब भगवान किसी जीव पर अपना विशेष कृपा करते उसमें विशेष शक्ति प्रदान करते हैं कि किसी कार्य के लिए तो सत्यगेश अवतार कहलाता है। तो नारद जी भगवान के सत्यगेश अवतार, तो वो कैसे ऐसे बने। व्यास जी को कहते हैं कि मेरे प्रिय व्यास जी, पहले के कल्प में पूर्व काल में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों की बस्ती में एक ब्राह्मण के घर पे सेवा करती थी, दासी थी, मैं उसका पुत्र था। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो भगवत परायण थे, इसलिए उनके पास हमेशा साधु लोग आया करते थे। और साधुओं के आने जब साधुओं का आवागमन होता है ना घर पे, आना जाना लगा रहता है, तो वो जो स्थान है वो तीर्थ बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। तो जब साधुओं का आवागमन होता रहता है, चातुर्मास के समय, आजकल तो चातुर्मास, पहले के पूर्व काल में ऐसा था कि चातुर्मास के समय साधु लोग एक ही जगह निवास करते थे और चार महीने तक वहाँ पर तीनों समय की कथा करते थे, थोड़ा सा अल्पाहार लेते थे, तपस्या करते थे और चार महीने एक ही जगह व्यतीत करते थे। उसका कारण ये था, इस समय जिस तरह से हमारे पास गाड़ी भी या इस तरह से फैसिलिटी है, वैसी फैसिलिटी उस समय हुआ नहीं करती थी, इसलिए वे लोग एक ही जगह रुकते थे। बारिश के समय में सब जगह ट्रैवल करना डिफिकल्ट है। आज हमारे पास प्लेन है, गाड़ी है, सब सुविधा है, प्रभु जी ने मुझे मंदिर से 10 मिनट पहुँचा दिया। उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी, लोगों को पैदल जाना पड़ता था और रास्ते ठीक नहीं होते थे। उस कारण से ये साधु लोग एक जगह निवास करते थे, कोई अच्छा से उचित स्थान देख कर रुक जाते थे। तो नारद जी कहते हैं कि जब मेरी माँ ऐसे ब्राह्मण के घर पर दासी थी, तो वहाँ पर कुछ भक्ति वेदांत लोग, मतलब जिनके जो भक्ति के जो वेदों के तात्पर्य से भली भांति परिचित है और वे उनमें वो भक्ति के भी आचार्य हैं, जैसे ऐसे भक्ति वेदांत लोग कुछ साधु लोग उस ब्राह्मण के घर पे आकर चार महीने निवास किए थे और मेरी माँ उनकी सेवा में थी और मुझे भी उन लोगों ने नियुक्त कर दिया था सेवा में। छोटे छोटे बच्चे जो भी सेवा करेंगे, 5 साल का पुत्र है, लेकिन जो भी उसके बस कैपेसिटी के हिसाब से जो उसकी सेवा होगी वो तो सेवा करता था। नारद जी कहते थे मैं यद्यपि बालक था लेकिन किसी भी प्रकार के चंचलता, मेरा मन चंचल नहीं था। आज हमारे हमारे बच्चों की ये स्थिति है कि हम लोग उनको टीवी और गेम से बचपन से उनको एक्सपोज कर देते हैं कि देखो भाई आई पैड ले लो, खेलो गेम, ताकि मैं शांति से अपना काम कर सकूं। अपने टेंशन को मिटाने के लिए हम लोग छोटे बच्चों को ये सब इन सब आधुनिक चीज़ों में लगा गेम खेलते रहो बेटा, तो घंटों घंटों छः छः घंटे लोग इंटरनेट टीवी और इसी में लिप्त रहते हैं, इनका मन चंचल हो जाता है, भगवान में मति इनकी लगनी बहुत डिफिकल्ट है। जो बचपन में संस्कार गिर गए वो गिर गए, वही अभी जो टीवी पे छः छः घंटा कार्टून और ये सब देखते रहते हैं, आगे जाके ये मूवीज बन जाते हैं, ये आगे जाके इनका परिवर्तन हो जाता है और ये पिक्चर देखने लगते हैं और फिर वो मन की चंचलता बढ़ जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं था, मेरा मन चंचल नहीं था, मुझे क्रिकेट फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं 20-20 मैचेस नहीं देखता था, मैं इतना शांत प्रवृत्ति का था कि जो मुझे आज्ञा दी जाती थी, जो मुझे बोला जाता था वो मैं कर लेता था, इस तरह से मैं आज्ञा अनुसार कार्य करने वाला छोटा सा बालक था और मैं कम बहुत कम बोलता था। 5 साल का बालक हमारे इर्द गिर्द में देखिए 5 साल का बालक बहुत बोलते रहता है, क्योंकि उसमें संस्कार 5 साल का लेकिन उसमें संस्कार ऐसे भर पड़े हैं, संसार इस तरह से घुसा दिया गया है कि वो फिर पापा पापा पा करता रहता है। यदि हम प्रयास करें कि बचपन से ही उनको पूरा अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, माहौल ही ऐसा ना बनाया जाए कि जिससे उनको विषयों के संपर्क में ज़्यादा आना पड़े, तब कुछ उम्मीद है कि भैया ये लोग कृष्ण भावना में बन सकते हैं। इस शील स्वभाव को देखकर उन समदर्शी मुनि को मैं पसंद आ गया। साधुओं ने ये देखा कि मैं इतना छोटा सा बालक उनके सारे आग्रहों का पालन करता, जो बोलते हुए मैं करता हूँ, इससे उनको प्रसन्नता मिल गई, जो साधु लोग थे उनको प्रसन्न हो गए, उनकी अनुमति प्राप्त कर मैं उनके बर्तनों में से उनका झूठन खाया करता था। रोज 4 महीने तक मैंने रोज उनका झूठन खाया है, ऐसे महान भक्तों का झूठन रोज खाया है, और इससे मेरे जो सारे पाप ताप है वो सब धुल गए। महाप्रसाद है गोविंद ने नाम ब्रह्म में वैश कर, जो साधु के जो महाप्रसाद है उसको खाने से जितने सारे पाप ताप है, इतने सारे सांसारिक अनर्थ है, जो आसक्तियां है, उनका उच्च खाना मतलब उनके स्वभाव को स्वीकार करना। तो हम उनके उनका उनका कुछ खाते हैं, उनका उच्च ग्रहण करते, हम लोग उनके जैसे हो जाएंगे। तो इतना समय तक चार महीने तक नारद जी को उनके उच्चिष्ट खाने मिला, और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, नारद जी कहते हैं मेरी भी रुचि उनके जैसी हो गई, मैं उनके जैसे ही बने लगा, क्योंकि मैं छोटा सा 5 साल का बालक था, लेकिन उनके जैसा भजन मैं भी करना चालू कर दिया। ये जो भक्ति वेदांत है, ये जो शुद्ध भक्त थे, और हम लोग भी, हमें भी ऐसे किसी भी जो हमें विश्वास है कि साधु है, उनका उच्चिष्ट खाने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, खा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, द्रौपदी जी लिखते हैं कि जो ठग लोग हैं उनसे दूर रहिएगा, द्रौपदी जी स्पष्ट लिखते हैं जो पाखंडी साधु लोग हैं उनसे, अगर उनका उच्चिष्ट खा लेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे, तो पाखंड हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए द्रौपदी जी लिखते हैं कि बिना परमिशन के खाइए साधुओं का, लेकिन जरा संभल, जरा परखना चाहिए कि किसकी मति भगवान में 24 घंटा लगी है, ऐसे महाजनों को खा सकते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, रुचि उत्पन्न होती है। भगवान में प्रेम कैसे बढ़ेगा, उनकी रुचि कैसे होगी जब उनकी कथाओं को सुनेंगे, प्रश्न होगा, कथा सुनने के लिए रुचि नहीं है उन लोगों की, तो वो कैसे जाएगा? वो अरुचि जो है, जो कथा सुनने की जो अरुचि है, वो भी कथा सुनने से ही जाएगी। कथा सुनने में बैठना पड़ेगा, बारंबार सुनते रहेंगे तो जो अचूक अरुचि है वो रुचि में बदल जाएगी। और हमारा जो मापदंड है ना, किसका, कि हमारा आध्यात्मिक स्तर कैसा है, वो पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है कि हमें कृष्ण कथा सुनने में कितनी रुचि है। जितनी कृष्ण कथा सुनने में रुचि है उतना समझना चाहिए कि हमारा लीडर उतना है। सीधा सरल आसान उपाय है अपने आप को समझने का, वो बुखार कितना होता है थर्मामीटर होता है ना, वैसे ये भी थर्मामीटर समझ लेना कि पता चल जाए कितना 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 कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति है, तो जितनी कथा सुनने में रुचि है। सिंपल। और जब भक्तों को ऐसे साधुओं की संगति में बड़ी कृष्ण कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाती है तो संसार के प्रति उनकी कुरुचि होती है, तो संसार के कुछ विषय भोगों में उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वे अब नहीं भोगना चाहते, वे भगवान के दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। और उनके कानों को भी संसार के वार्ता सुनने की लालसा नहीं रह जाती, उनके कानों में बस कृष्ण कथा सुनने की लालसा रहती है, बस कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा रहती है। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीलापरायण महात्माओं के अनुग्रह से प्रतिदिन भगवान की मनोहर कथाएं 3 बार सुना करता हूं। भगवान के अवतार का प्रयोजन और साधुओं का प्रयोजन एक ही है। जैसे मैंने कल बताया था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन है कि बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना, साधुओं का भी यही कार्य है। ये जो ऐसे साधु होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं जो संसार में घुमा करते हैं, जो हमारे जैसे बद्ध जीवों को भगवान के धाम में पहुंचाने का कार्य है। इनका मुख्य कार्य है कि श्रीमद् भागवत में जो भगवान की लीलाएं रखी गई है उनको वे लोग गाते रहते हैं, और वो भगवान की लीला को गाकर जो सांसारिक जीव है ना, वो लोग जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं ऐसे साधुओं के मुख से, तब उनका ताप पाप सब नष्ट हो जाता है, वे संसार को छोड़कर वे कृष्ण की तरफ कृष्ण के प्रेमी भक्त बन जाते हैं। लेकिन ऐसे साधु के मुख से सुनना बहुत आवश्यक है, और ऐसी कथा श्रवण करेंगे तो अंतक जो जीव का अंतकरण है ना वो एकदम पूरी तरह से साफ, जैसे साधुओं का मन और हृदय कैसा रहता है कि पानी जैसा रहता है, निर्मल कोमल, वैसी हम लोग भी बन जाएंगे। हमारा हृदय इस समय पत्थर भी जैसा है, लेकिन ऐसे साधुओं के मुख से कथा श्रवण करते रहेंगे, बारंबार सुनते रहेंगे तो हमारा चित्त भी निर्मल हो जाएगा और भगवान के निवास के लिए योग्य स्थान बनेगा। हृदय में भगवान के निवास के लिए एक आसन लगाना पड़ता है, और भगवान सब हृदय में नहीं आते, योग्य स्थान बना हृदय में आसन बनाना, जिससे हम लोगों ने इस स्थान में भगवान के लिए एक स्पेशल स्थान दिया है, वहाँ पर भगवान के अर्चन जो रखा है उनकी पूजा करते हैं, एक स्पेशल स्थान है जहाँ पर हम सब प्रणाम करते हैं। उसी तरह से हमारे गंदे हृदय में जहाँ पर काम वासनाएं इंद्र तृप्ति के प्रति हमारे जो हम लोग लगे हुए हैं, तृष्णाएं हमारी संसार को भोगने की, वहाँ पर भगवान कभी नहीं आएंगे। तो भगवान को हृदय में रखने के लिए ऐसा स्थान बनाना है, तो भगवान की कथाओं को बारंबार श्रवण कीजिए। भगवान की लीलाओं को श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। कृपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि केवल भगवान का कथाओं को बस श्रवण करने से, सबसे बड़ा उदाहरण तो किसका है, महाराज परीक्षित। केवल 7 दिन तक भगवान के कथाओं को सुना उन्होंने, और उससे ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पार्षद बन गए, केवल 7 दिन में। भक्तों की संगति में बैठकर श्रवण करने की विधि से ये कला प्रदान युग में भी हम लोग विशेष रूप से विशेष स्टेज में जा सकते हैं, भगवान के प्रति भक्त बन सकते हैं। इस युग में बहुत डिफिकल्ट है इस तरह की दुर्लभ, भगवान का प्रेम बहुत दुर्लभ है। यदि हमें वैसा प्रेमी भक्त बनने की लालसा है तो ऐसे साधु के संगत बैठ कर कथा श्रवण करने की इच्छा रखिए। वो कार्य करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक कली बल है वो निकल जाएगा और हम भगवान के प्रेमी भक्त बन जाएंगे। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के हमें भी दर्शन होंगे, भागवत पढ़ेंगे ना तो हमारे आंखों के सामने ये जो कथा है वो चलती रहेगी, ऐसे लीला चालू रहेगी। तो ये संभव है कि ऐसे महाजनों के संगति में बैठकर कथा सुनना पड़ेगा, तो कथा सुननी पड़ेगी, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप हमारे अपने हृदय को खोल कर रखना पड़ेगा सामने। साधुओं के सामने कपट नहीं चलता, भगवान और साधु चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पतित लोगों का उद्धार करते हैं, कपटी लोगों का नहीं। कपट का अर्थ क्या है कि बाहर से हम दिखा दे कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन जैसे एकांत में हो जाएंगे सारी भक्ति का पता चल जाता है। हमारे जो पुरानी जो आदत है सब बाहर निकल गया, हम उसको करते रहते हैं एकांत में, बाहर तिलक कंठी मार के रहते हैं। तो एक कपट है, ये हमें समझना चाहिए कि ये हमारे अनर्थ है, ये जो हमारे बुरी आदत है हमारे अनर्थ है। और इस समय मुक्त यदि होना है तो हमें साधुओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, उनके सामने हमारी इन बुरी आदतों को रखना पड़ेगा कि हे साधु, हे महाजनों, मेरी ऐसे बुरी बुरी आदतें हैं, तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, किस तरह से मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ। तो साधु ये ईमानदारी देख कर द्रवित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और उनकी कृपा से हम हमारे कमजोरियों को लांग सकते हैं, हमारी बुरी आदतें छूट सकती है, और हम लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं, प्रेमी भक्त बन सकते हैं। हम लोगों के लिए श्रवण आधार है, श्रवण ही हम लोगों का आधार है जीवन का, भगवान के गुरु का विषय में सुनना। रुक्मिणी छोटी सी थी, और वे जब अपने उनके पिताजी थे वो धर्मपरायण व्यक्ति थे, राजर्षि थे, तो वे साधुओं को आमंत्रित करते थे अपने राज्य में, अपने घर में कि आइए कथा सुनाइए, मेरा भी उद्धार होगा और हमारे प्रजा का भी उद्धार होगा। तो साधु लोग उनके वहां पर प्राय आया करते थे, और साधु लोग आते थे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते थे। रुक्मिणी जी ने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, लेकिन रुक्मिणी ने साधुओं के मुख से भगवान के गुणों का श्रवण किया था, और श्रवण करते करते रुक्मिणी निर्णय कर लिया कि अब मेरा कोई पति होगा तो केवल श्री कृष्ण होगा और कोई पति नहीं होगा। लेकिन ये बात तो उसके पिताजी तो समझ रहे थे, लेकिन जो रुक्मिणी था उसका भाई था उसको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसकी इच्छा थी कि विवाह यदि रुक्मिणी तेरा होगा तो शिशुपाल से ही होगा, और रुक्मिणी का व्रत था यदि शिशुपाल से मेरा विवाह होगा, शिशुपाल ने मुझे छू लिया तो मैं वही अपना शरीर त्याग कर दूंगी। तो ऐसी स्थिति में रुक्मिणी ने भगवान के गुरुओं को सुनकर उनसे प्रेम किया और एक पत्र लिखा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण कृपा करो, मैंने आपके गुरुओं को सुना, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को आपके चरण को मैं अर्पित करती हूँ, कृपया कर मेरा आप हरण कर लीजिए। इस समय में मेरा थोड़ा समय बचा है मेरे जीवन में, मेरा शादी होने में बहुत थोड़ा समय बचा है, कि यदि आप नहीं पहुंचे समय पर तो ये रुक्मिणी जीवित नहीं रहे, अब मेरी लाज आपके हाथ में, जो करना है कीजिए। भगवान द्वारका में थे, रुक्मिणी महाराष्ट्र में कॉन्टिनेंटल में, एक ब्राह्मण किसी तरह से पहुंच गया और भगवान के हाथ में लेटर दे दिया। भगवान ने लेटर पढ़ा और भगवान ब्राह्मण से कहते हैं कि जितना रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है ना, उतना मैं भी उससे कई गुना ज्यादा मैं भी प्रेम करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा भगवान, तो करने वाले क्या है, वहाँ पे शिशुपाल आदि सब लोग रुक्मिणी विवाह करने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। जिस तरह से शेर सियारों के बीच में से अपना शिकार ले जाता है उसी स्टाइल में मैं अपने रुक्मिणी को हरण कर लूंगा। भगवान एक रात में, अरे इनको तो बलराम जी को इन्फॉर्म करते, वहां पर बहुत अक्षुणी सेना आई हुई थी वहां पर, अरे शिशुपाल जरासंध बड़े बड़े राजा लोग, सबको मालूम था कि यहाँ पे कांड होने वाला है, इसलिए सारी सेटिंग ला के बैठे थे, सारे महारथी, अरे विवाह करने जा रहे हैं या कोई युद्ध करने जा रहे हैं, विवाह के लिए सारे टाइट मेंटेन लगा दिए थे, एकदम झेड़ सिक्योरिटी लगा दी थी। तो यहाँ पर भगवान ने बलराम जी को तो इन्फॉर्म नहीं किया कि दाऊ तेरा साथ में चलो, भगवान अकेले निकल पड़े। बाद में दाऊ जी को पता चला कि कृष्ण का चला गया, कृष्ण कौंडल्यपुर गया है।
अच्छा कौंडल्यपुर गया है,
तो बलराम जी को तो पता था, क्षत्रिय समाज में पता होता है कि कौन से वहां बड़े बड़े क्षत्रिय लोग एकत्रित होते हैं एक जगह पर, पता होता है। तो वहां पर तो शिशुपाल जरासंध आदि बड़े बड़े महारथी एकत्रित हुए हैं, तो वहां पर ये क्या करने गया है? ओहो रुक्मिणी मंगलम। तो दाऊ जी ने क्या किया, बोले दाऊ जी को आश्चर्य भाव था, ये भाई थे कि कृष्ण कृष्ण क्यों लड़ेगा, बड़ा भाई होते हुए छोटा भाई क्यों लड़ेगा, तो हम उतरेंगे मैदान में। तो दाऊ भी भगवान तक पहुंच गए थे, लेकिन दाऊ भी सारी सेना को लेकर एक रात के अंदर ही पहुंच गए दाऊ जी। ये बड़ी विचित्र बात है, द्वारका से यहाँ आने में ट्रेन से भी टाइम लगता है, लेकिन भगवान अपनी सारी सेना सहित पहुंच गए मंडलेश्वर में। और वहां पर पहुंच गए तब रुक्मिणी के पिता ने उनका स्वागत किया, आइए। और भगवान ने आते ही वहां प्रसंग बजा दिया, भगवान का भी ऐसे चित्र स्टाइल है, आते तो इन्फॉर्म कर दे कि मैं आ गया, तुमको जो करना जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं उधर कार्य करने आया हूं। अब रुक्मिणी बड़ी चिंता में थी कि शादी का एक शादी के एक दिन पहले उनको एक दुर्गा जी के मंदिर में जाना था, दुर्गा जी का मंदिर है मंडलेश्वर में, उस मंदिर में जाना था। तो रुक्मिणी जी ने कहा था कि इस समय पहुंच जाइएगा, उसके बाद लेट हो जाएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, मैं खून खराबा नहीं चाहती हूँ, आप मेरा हरण कर लीजिए बस, मैं खून खराबा नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी मेरे भाई किसी को आप मार दे ना, ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, आइए इस समय में आइए और मुझे ले जाइए। अब रुक्मिणी जी वो समय आ गया, चाहे उसने भगवान को बताया था, रुक्मिणी परेशान हो गई, अब तक ना ब्राह्मण आया ना भगवान का आने का कोई संदेश आया है, रुक्मिणी चिंता में एकदम ऊपर नीचे आगे पीछे, क्या करूं, अभी शरीर छोड़ दूं क्या करूं क्या करूं, और किसी को बता भी नहीं सकती। ऐसा था कि बस उनमें उसमें ब्राह्मण में और भगवान में इन तीनों की बात थी, ना किसी सहेली से शेयर कर सकती थी, ना अपनी माताओं से, किसी से कुछ नहीं शेयर करना था उसे। उन्होंने भगवान के गुणों को भगवान को देखा तक नहीं था, ये श्रवण की महिमा है, बस भगवान के गुणों को साधुओं के मुख से सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने आप को सौंप दिया था। हमारी भी यही दशा है, हम भगवान को अर्चन करने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन साक्षात नहीं देख, साक्षात देखने की लालसा होनी चाहिए। तो रुक्मिणी जैसे जब हम लोग भगवान की कथाओं को सुनेंगे, हमारी भी वही दशा हो जाएगी, भगवान आएंगे ऐसा हम उठा ले जाएंगे। इस तरह से माया के चंगुल में, इस माया जगत में हम लोग यहाँ पर है, तो भगवान आएंगे और हमें हर कर ले जाएंगे। तो रुक्मिणी इंतजार कर रही थी कृष्ण का कि अब आएंगे, ब्राह्मण तक ले आया, क्या होगा। और फिर अचानक से रुक्मिणी के शरीर में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जब उनका स्त्रियों का दाया अंग फड़कने लगता है, तो सारे उनके दाए अंग आग बिल सब फड़ने लगे, तब समझिए शुभ समाचार है। और रुक्मिणी जैसे देख रहे थे तो ब्राह्मण के दर्शन हुए, और ब्राह्मण ने बहुत बड़ी सुंदर स्माइल दे दी, तो ब्राह्मण की स्माइल देख कर रुक्मिणी जी समझ गए कि कृष्ण श्याम सुंदर आ गए। तो रुक्मिणी जी जब दुर्गा जी की पूजा करने के लिए जा रही थी, उस समय रुक्मिणी जी देखना चाहती थी श्याम सुंदर कहाँ है, तो रुक्मिणी जी ने अपना घूंघट उठा दिया, और घूंघट उठा दिया तो वहाँ पे जितने सारे राजा लोग थे ना, वो सब बेहोश होकर गिर पड़े उसके सौंदर्य को देखकर। अरे रुक्मिणी जी भगवान की अंदर का शक्ति है, भगवान की अपनी पत्नी है, कितनी सुंदर होती हो। प्राकृत जगत के सौंदर्य को देख के हमारे हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, लोगों की हालत खराब हो जाती है, जब ये अप्राकृत सौंदर्य ऐसे प्राकृत लोगों को दिख जाएगा तो बेहोश तो होना ही था। जो बेहोश नहीं हुए वो स्टैचू बन गए थे, मूर्ति बन गए थे, वो कुछ नहीं करना था, बस एक बार देख लिया रुक्मिणी जी को, बस कहानी खत्म होने वाली थी, अब कुछ करना नहीं था। भगवान आए सबके सामने, रुक्मिणी को उठाया गाड़ी में, घोड़े में, अपने रत्न विरत्न बिठाया और ले गए, और ये सारे के सारे लोग तमाशा देख रहे थे बस। तब शिशुपाल चिल्लाया, अरे मूर्खो क्या कर रहे हो, हाँ तुम लोगों के सामने ये गीत आकर हम लोग तो भाग ले गया, अरे इसको रोको। सॉरी लेट हो गया था, वो भगवान लेके जा चुके थे बाद में, तो युद्ध हो गया उनमें और भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को केवल कथा सुन के प्राप्त किया, कथा का श्रवण कर। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु इन दोनों समय में मैंने जब भगवान की कथाओं को सुना, बारंबार सुना, तो उनकी प्रत्येक बात को मैं ध्यान से सुनता था, एकदम ध्यान से। और इसी से जो शिष्य है इस तरह से ध्यान से अपने गुरु की बात सुनता है, तो गुरु प्रसन्न होकर अपने मन, अपने हृदय में है, जो उनके हृदय में भगवान बंदी होते हैं, तो मन के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को कृष्ण को दे देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। गुरु अपने शिष्य को मन के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं कृष्ण को। यदि वे किसी भक्त की सिंसियरिटी पे, उनकी ईमानदारी पे, तो अच्छे से कथा श्रवण कर रहा है, आगे का पालन कर रहा है, तो उस पर कृपा करते हैं ऐसे साधु लोग, और हमें भगवान ऐसे प्राप्त होते। ये है भगवान के प्राप्त करने का तरीका। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्म के समय भगवान पहले वासुदेव के मन में प्रकट हुए थे, वासुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में ट्रांसफर हुए, और बाद में वहां उसके मन से फिर गर्भ में चले गए। तो ये विधि यहाँ पर भी लागू होती है। शुद्ध भक्त, यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है, यदि उसकी इच्छा है कि हम भी शुद्ध भक्त बने, हम भी ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त बने, यदि किसी की इच्छा है, तो उसे सदैव और ऐसे शुद्ध भक्तों की सन्निधि में रहना चाहिए, सदैव। अब प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा कैसे संभव है, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं भैया, कहाँ साधु के पीछे घूमते रहेंगे, परिवार कौन संभालेगा, बच्चों को कौन देखेगा। सन्निधि का अर्थ है उनके आदेशों के माध्यम से। साधु की संगति दो प्रकार से होती है, एक तो उनकी फिजिकल सेवा कीजिए, व्यक्तिगत रूप से जब रहेंगे तो उनकी सेवा कीजिए, और दूसरी सेवा होती है जब साधु आपको कोई आदेश देता है और उस आदेश का जब आप पालन करते हैं, तो वो साधु आपके साथ हमेशा रहते हैं, या आप उनके साथ हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, उन शिक्षाओं के माध्यम से हमेशा उस साधु के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम लोग सदैव साधु की संगति में रह सकते हैं, यदि हम साधु के दिए हुए आदेशों का पालन करें। मुख्य आदेश तो दिए 16 माला जप करना, 4 नियमों को पालन करना, भागवत का श्रवण करना, ये सब हम कार्य करते रहेंगे तो हम लोग सारे आचार्यों के संपर्क में रहेंगे। परीक्षित महाराज का एक गुण था कि यदि वो क्षत्रिय थे, राजा थे, समस्त ब्रह्मांड के चक्रवर्ती, समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने अपना जो एक साधारण बद्ध जीव की भांति उनके चरणों में गिर पड़े थे और कहते थे कि मुझ मेरा उद्धार कीजिए। तो ये भावना होनी चाहिए, ये नहीं अरे ये धारणा हो कि भाई ये क्या हमारा उद्धार करेंगे, इनमें और हमें क्या अंतर है, इनको भी तो सर्दी होती रहती है, इनको भी पैरालिसिस होता रहता है, इनको भी ये होता रहता है, अरे इनमें और हमें क्या अंतर है, सब ये भी मनुष्य साधारण, ये धारणा रखेंगे तब तो 84 लाख योनि में जन्म जन्म तक पटकने के लिए तैयार रहिए, निश्चित रूप से कभी उद्धार संभव नहीं है। भाव का परीक्षित जैसे होना चाहिए, नम्रता, सेवा करने की प्रवृत्ति और विश्वास, साधुओं का विश्वास। तो नारद जी कहते हैं कि इन दीन वत्सल महात्माओं ने मुझे गुह्यतम से गुह्यतम ज्ञान मुझे प्रदान किया। कौन सा गुह्यतम, उन्होंने देखा कि मैं उनका आज्ञाकारी हूं, मैं उनके और मेरे अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा है, तब उन आज्ञाकारी महात्माओं ने मुझे ऐसे गुण रहस्यों को बताया जिससे सुनकर मेरा चित्त कृष्ण में पूरी तरह से लग गया। सबसे गुह्यतम बात भगवान के गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यं योयम् यदि तत्त्वा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहति मां प्रति सुवर्जन। श्रील प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे भगवद गीता पर, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को पूछा कि भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण। तो किसी ने क्या कोई जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी ने मन मन भक्तों मन याचिमा नमस्कार, किसी ने कुछ जवाब दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक गीता का ये है, जन्म कर्म च मे दिव्यम् मेरे जन्म कर्म के बारे में जो समझ लेता है कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे व्यक्ति को पुनः संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए सुनना कि जन्म कर्म चमे दिव्य, महाभगवान के कार्यकलाप दिव्य है और उस पर विश्वास रखना हृदय में, ये अलग बात है, ये दो अलग चीज है, इसको एक नहीं समझ लेते, बस सुन लिया हाँ अभी भगवान। लेकिन अंदर से हम जानते हैं अपने को कि हमारा कितना विश्वास है, कितना परसेंटेज में विश्वास है भगवान की इस बात पर। तो जितना तो ऐसा विश्वास बढ़ाने के लिए भक्ति में, भगवत तत्व में, भक्तों में, हमें साधु की संगति में आना पड़ेगा। तो भगवान इस ऐसे भूयतम से भूयतम रहस्य को इस इन साधुओं ने नारद जी को बताया था। उस उद्देश्य से ही जगत के जो निर्माता भगवान श्री कृष्ण है, जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से मैं जान सका कि जिसके जान लेने पर परम पद की प्राप्ति होती है। और इन सब भगवत तत्व को जान लेंगे ना हम, तो हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। ये जान गए कि कृष्ण ही हमारे माता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या च द्रविणम, तुम्हें वो सर्वमो देव देव। हमारी हम जब ये जान लेंगे कि कृष्ण के अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है, इस कंक्लूजन में जब तक हम लोग नहीं आएंगे, विश्वास नहीं होगा, जब तक हमारा विश्वास होगा कि हमारे पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारे ससुर जी है, उनके इतना धन है, संपत्ति, अरे हमारा तो सब सब ठीक है भैया, कुछ नहीं है, ये विश्वास रहा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये विश्वास हो कि कृष्ण के अलावा मेरा कुछ नहीं है, सारे जो लोग हैं टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए हमारा संबंध इनसे है, इनको मैं मेरा मानकर कुछ होने वाला नहीं है, वास्तविक संबंध हमारा कृष्ण से है, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये जब कन्विक्शन आ जाएगा तब हम भगवान के पार्षद बनने के योग्य हो जाएंगे। ये हृदय में कन्विक्शन होना चाहिए। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। अब देखिए कि नारद जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे संसारिक लोग भगवान की प्रेमी भक्त बन सकते हैं। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका। नारद जी कहते हैं कि सांसारिक लोग जो कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, उससे उनका प्रारब्ध बनता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। लेकिन वही कर्म, वही कार्य, सब कुछ वही श्री कृष्ण के लिए किया जाए तो वही कार्य भक्ति बन जाता है और कर्म बंधन को काट देता है सारा का। अगर ये समझेंगे कि इस परिवार का स्वामी श्री कृष्ण है, मेरे परिवार के स्वामी कृष्ण है, ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है शरीर के, लेकिन इसका वास्तविक समय इसका कृष्ण से है, इस धारणा को हमेशा याद रखना और एक अनासक्त रहते हुए कार्य करना चाहिए। परिवार को संभालना, सारे कार्य घर पे अर्चा विग्रह इसलिए होना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखने के लिए भगवान घर के सेंटर में होने चाहिए। आज घर के सेंटर में बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं तो कैसे उम्मीद कर सकेंगे कि भगवान आपके जीवन के सेंटर बन सकते हैं, कि 50 इंच 100 इंच पता नहीं कितने बड़े इंच की टीवी रहते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, भक्तों के घर में मैं देखता हूँ इससे बड़े बड़े टीवी, तो भगवान एक जगह होते हैं और टीवी इष्ट देव बने हुए रहते हैं, घर वाले भक्त लोग भी जो सोना वाला जप करने वाले हैं सब लोग, उन लोग भी अपना प्रसाद बना रहे हैं, सास बहू का टीवी सीरियल चल रहा है, भगवान के लिए ऐसा प्रसाद बनाएंगे, अरे अपने लाइफ में ट्रेजेडी कम है जो दूसरों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं आप लोग। अब आपके जीवन में कुछ उल्टा पलट कम हुई है इस संसार में कि आप लोग वो सास बहू के जीवन में क्या चल रहा है उस पर आप टीवी पे देखना चाहते हैं, लगे रहते हैं इस तरह से। इस तरह से हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कृष्ण की तरफ अरुचि हो जाएगी, संस्कार की तरफ रुचि हो रही है। ये बड़े दुख की बात है कि कृष्ण कथा सुनने में अरुचि और ये सब धीरे धीरे ट्रैक बदल रहा है। हम समझ नहीं रहे इस बात को। ये सब हम लोग एक जगह भक्ति कर रहे हैं, सोना माला जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो ये हम लोगों का ट्रैक बदल रहा है। हम लोग धीरे धीरे हम लोग ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा कुछ रस मिलता है, इसमें भी कुछ है। तो धीरे धीरे करके यही रह जाएगा। भगवान कृष्ण सोचेंगे इसको इसी में इंटरेस्ट है तो इसको ये दे देते हैं। देख लो भाई 50 के 100 इंच का टीवी ले लो, थिएटर बना लो, देखते रहो। हमारा जो ट्रेन है वो संसार की तरफ दौड़ रही है। हम लोग दौड़ रहे संसार की तरफ राजधानी के स्पीड से, और ये साधु संघ भागवत एक जंक्शन की जैसा है। जंक्शन में क्या होता है, ट्रेन आती है जंक्शन में, यदि उसको उल्टे डायरेक्शन में जाना होता है तो इंजन का डब्बा निकाल कर दूसरे जगह लगाया जाता है और ट्रेन जाती है ना, तो दूसरी जगह जाती है। तो ये साधु संघ जो है ना, ये जंक्शन के जैसा है। ये श्रीमद् भागवत की कथा ये जंक्शन के जैसा है, जहां पर हम लोग आएंगे उसके संपर्क में आ जाने से हमारा जो इंजन का डिब्बा है जो संसार की तरफ लगा हुआ है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और हम लोग आध्यात्मिक श्री कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ेंगे। तो ये जंक्शन में आना चाहिए। ये यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है, आप लोगों ने अपना समय दिया है, ये बहुत बड़ा कार्य दिया है, लेकिन ये छोटी मोटी आदतों को भगवान के श्रवण कीर्तन से छुड़ा दीजिए। इतना अधिक श्रवण कीजिए, इतना अधिक भागवत पढ़िए कि हमारे ये छोटे ये जो सास बहू के सीरियल हमारे जीवन से चले जाए, निकल जाए, टीवी को निकाल कर वहां पर भगवान इष्ट करना चाहिए। घर के मुख्य स्थान पर टीवी रहता है बड़ा, उसको हटा कर वापस कृष्ण का भगवान का फोटो होना चाहिए। कभी कभी दूध दूध के पदार्थ खाने से जिस तरह से हमारी पेट गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उसी दूध के पदार्थ बनने से दही दही या छाछ उसमें कुछ औषधि डाल के वही हमें उस तकलीफ से जो हमें दूध के पदार्थ खाने से चीज इत्यादि खाने से जो हमें पेट में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाती है। नारद जी कहते हैं चिकित्सक जो होता है वो उसी वो औषधि को उसी वस्तु को अलग तरीके से उस व्यक्ति को देता है, औषधि बनाकर देता है कि वो काम करती है। उसी तरह से हम लोग संसारिक लोग जो होता है हमें हमारे सारे कार्यक्रम यदि हम कृष्ण के लिए करेंगे तो हम भगवान के निश्चित करने हम करने वाले हैं सारे कार्य के लिए। घर पर अर्चा के लिए रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सारा परिवार यदि भी कितना भी व्यस्त है लेकिन घर में अर्चा विग्रह होते हैं तो उनकी सुबह सुबह पूजा होना, उनको भोग लगाना, आरती करना, छोटे छोटे बच्चे घर में थे वो भी थोड़ा उनको भी छोटी छोटी सेवा देनी चाहिए। तो जिस तरह से प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था ना, उसी तरह से ये अर्चा विग्रह जो हमारे घर में होते हैं ना, ये नहीं समझना चाहिए कि जो मंदिर में है वो ड्यूटी है, वो भगवान है, यहाँ पर भगवान नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये इस अविश्वास के साथ नहीं सेवा करनी चाहिए। वो भगवान ही है, वो आपके परिवार के सदस्य बनने के लिए आपके घर में प्रकट हुए हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं ये जो जीव है वो मुझे अपना स्वामी माने, अपना मित्र माने, अपना पुत्र माने, अपना पति माने। भगवान चाहते हैं कि हम लोग ऐसा जोड़े संबंध जोड़े उनसे, उसी लिए हम लोग पर दया करके कृपा करके हमारे सामने भगवान अर्चन विग्रह के रूप में प्रकट है। तो भगवान को घर पे आमंत्रित करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो ये सेवा ही कंटिन्यू होने वाली है। भगवान के धाम में भगवान की सेवा करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस तो यही करनी पड़ेगी ना। तो क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति उस पहले तो सचिन तेंदुलकर भी क्यों ना हो, इतने सारे मैच खेले इतने सारे, लेकिन वो भी अथक प्रयास करता है नेट्स में, तब मैच शुरू होने से पहले तब वो मैदान में उतरता है। तो उसी तरह से हम लोग भगवान के धाम में जाना है, उसके लिए वहां पर ध्यान प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस से ये कि घर पे भगवान का अर्चन कर रखिए और उनकी सेवा की प्रैक्टिस कीजिए, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, सेवा करते करते भगवान के साथ घनिष्ठता हो जाएगी। हम ये मानने लगेंगे कि शीघ्र ये कि हमारे परिवार में और दो लोग रहते हैं, चार लोगों का परिवार है तो दो लोग और बढ़ जाएंगे, छह लोगों का परिवार है हम लोगों का, तो भगवान की भगवान को भी अच्छा लगता है ये मेरा परिवार है। तब क्या हमारा प्रारब्ध कर्म उसमें इंटरफेयर करेगा, कौन सा बड़ा दुख आकर हमें परेशान करेगा जब भगवान इस परिवार को अपना मानने लगेंगे। पांडवों पर क्या क्या मुसीबतें नहीं आई, लेकिन क्यों बचे रहे हम लोग, क्योंकि उन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना जीवन बना लिया था और श्री कृष्ण ने उनको अपना जीवन बना लिया था, इसलिए हर एक संकट में श्री कृष्ण उनके साथ में रहते थे। एक बार ऐसी घटना थी, ये लोग वन में थे और वन में दुर्वासा ऋषि एक बार यहाँ गए थे दुर्योधन के पास, और दुर्वासा ऋषि ने उनकी अच्छे से सेवा की और कहा दुर्वासा ऋषि से, ये दुर्वासा ऋषि मेरे भाई जो पांडव है वो पास में ही है, जरा उनके पास भी आप चले जाइए 10,000 शिष्य को लेके, हाँ, और उनको भी जरा आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो दुर्योधन ने इस तरह से कंफर्ट किया, और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र ऐसा पात्र था कि एक बार सब जितना अन्न चाहिए उतना मिल जाएगा एक बार में, और यदि द्रौपदी उसको खा लेगी उसके बाद कुछ नहीं होगा, उस दिन के लिए वो विराम करेगा। और उन लोगों ने भोजन कर लिया था सारे लोगों ने, और वहां पर अचानक से दुर्वासा जी प्रकट हो गए, कितना बड़ा संकट, और दुर्वासा ऋषि इतने खतरनाक है कि संतुष्ट हुए तो ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसको कोई नहीं दे सकता, और यदि क्रोधित हुए तो ऐसा श्राप दे देंगे कि भूल जाइए, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंच जाते हैं महाराज युधिष्ठिर की कुटिया में, और महाराज युधिष्ठिर देख कर प्रणाम करते, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। और वे जाके कहते हैं कि द्रौपदी कुछ करो व्यवस्था, बोला आपके व्यवस्था करेंगे, अब श्राप के लिए तैयार रहिए, वो श्राप दे देंगे, पहले से ही हालत पहले से वन में है, अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। तो भीम इत्यादि सब लोग आ गए, सब लोग एकत्र मीटिंग हो गए, उन्होंने क्या क्या किया जाए। दुर्वासा ऋषि बोले मैं नहाने जा रहा हूँ, जब लौटूंगा सब प्रसाद तैयार रखना सबके लिए। तो द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण कहा द्वारका में, ये कहा जंगल में, कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण अचानक सर हमारे घर पर परिवार में कोई संकट आ जाए, जब तक मगर भगवान से संबंध है, घर में भगवान है तब उनको बोल सके प्रभु रक्षा कर लीजिए, घर में भगवान ने टीवी रखा हुआ है उनके जगह पर, तो टीवी को जाकर तो बोल नहीं सकेंगे भाई रक्षा करो, तब तो फंसने वाले हैं, तो कौन बचाएगा। अरे भक्त है हम लोग, लेकिन जीवन का इष्ट विषय घर पे टीवी है, भगवान है साइड लाइन है, हाँ भक्ति कर रहे भजन कर रहे सोलह माला जप कर रहे संडे में एक बार जाते मंदिर में ठीक है, बस यदि संकट आ जाए तो भगवान रक्षा कर देंगे, ऐसे ऐसे उन लोगों की रक्षा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन सिद्धांत ये समझाना चाहते हैं कि भगवान को घर पर रखिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको अपने जीवन का विषय बनाइए, ना कि अन्य चीज़ों, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग भगवान रक्षा निश्चित करेंगे, लेकिन सिद्धांत को समझिए। तो भगवान वहाँ पर आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, द्रौपदी कहती है लो ड्रामे बाज आ गया, हम लोग मर रहे उसकी वजह से और इनको भूख लगी है, बोले जिस संकट के लिए बुलाए वो तो समझो पहले, बोले द्रौपदी पहले खिलाओ, भूख लगी है बहुत। तो द्रौपदी कहती है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बना सकते हो, और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए 10,000 ऋषि, उनका क्या होगा। तो बोले जाओ और अक्षय पात्र लाओ, उसको कुछ बचाया मुझे दे देना। तो भगवान ने उस अक्षय पात्र में से एक शाप का कण था उसको खा लिया, और सारे उनके सारे संसार के जितने सारे जीव थे वो संतुष्ट हो गए। दुर्वासा ऋषि भी नहाकर जब बाहर आए डकार देने लग गए, सारे शिष्य डकार देने लग गए और कहने लगे अरे बाप रे ऐसा पेट कैसे भर गया। तो कहा कि अरे अगर वहां पर द्रौपदी ने अगर हम लोगों ने भोजन बना के रखा होगा और हम लोग इतने ठीक से नहीं खा पाएंगे तो उनको कहा कि अम्बरीश महाराज वाला प्रसंग दोबारा रिपीट ना हो जाए। अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया तो तीनों लोगों में घूमने के बाद उनकी हालत खराब हुई। शिव ब्रह्मा जी कोई नहीं मिलते, वैष्णव लोग बड़े खतरनाक है यार, हम लोग क्यों आए यहाँ पे। अभी दुर्वासा जी टेंशन में, क्यों आए हम लोग यहाँ पे, अरे आप लोगों में से किसी को भूख लगी है। बोले बिल्कुल नहीं, हम लोग एक कदमी नहीं खा सकते अभी। बोले लो अब भागो यहाँ से, तुम लोग आधे लोग आकाश में छू हो जाओ, आगे लोग पानी में घूम जाओ, आगे लोग जमीन में निकल जाओ और बच्चे बच्चे गायब हो जाओ, लेकिन यहाँ पर नजर बता दो। अगर एक पांडव को पता चला कि हम लोग नहीं आए यहाँ पर तो उनका भोजन स्वीकार कर लेंगे तो फिर भगवान का सुदर्शन पीछे पड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा भीम को, भीम जाओ और जरा चेक करो, जरा दुर्वासा जी को इन्वाइट करा जाओ। बोले कृष्ण तो तुम्हारा दिमाग सही है ना, क्योंकि भगवान का साक्ष्य रास्ता उनके साथ, तो इस तरह से बातें चलती थी। ऐसा नहीं था फॉर्मेलिटी, तुम्हारा दिमाग सही है कृष्ण, कैसे वो क्या क्या खिलाएंगे उनको, बोले जाओ तो सही। तो भीम जाते पता लगाने के लिए, गए कहाँ पे, तब तब किसी ने देखा होगा तो बोलते कि सब गायब हो गए, तो भगवान बचा लिए। इस तरह से पांडवों की भगवान ने क्षण क्षण में रक्षा की है। और पांडव लोग यद्यपि पांडवों के साथ कृष्ण कभी अधिक नहीं रहते होंगे, लेकिन वो सदैव उनके साथ रहते थे। कभी भी पांडव भगवान को कभी नहीं भूलते थे एक क्षण के लिए, श्री कृष्ण भी ऐसे ऐसे भक्तों को कभी नहीं भूलते थे। जब दुर्वासा ऋषि जब वैकुंठ गए थे, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ रहेगा, भगवान के इतिहास में ऐसा हुआ रहेगा कि एक भक्त याचना करने के लिए, मतलब तो कोई याचना कर रहा है भगवान के सामने, भगवान ने उसको ठुकरा दिया होगा। भगवान अम्बरीश ऋषि अम्बरीश दुर्वासा ऋषि भगवान के सामने कहते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए आपके सुदर्शन से। भगवान ने कहा अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया तुमने, अम्बरीश जानते हो बोले आम भक्त पराधीना, मेरे अम्बरीश महाराज के हृदय में रहता हूँ, उसने मुझे बंदी बना लिया है और मेरे हृदय में मैंने अम्बरीश को बंदी बना लिया है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहता है, इसलिए आई एम सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। यदि भी मेरा सुदर्शन है लेकिन मैंने उसको आदेश देकर रखा है, मेरे भक्तों को परेशान करेगा तो बिना मेरी आज्ञा से जिसने परेशान है उसको उड़ा देना, उसको पूछने की बात नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ रहेगा कि वैकुंठ से भी कोई लौट गया। अभी दुर्वासा ऋषि इतना सामर्थ्यशाली थे कि वैकुंठ जा सकते थे, उनकी निराशा हो गई। तो प्रभु मैं करूँ क्या, जाओ जिसका अपराध किया उसके चरणों में जाकर गिरो। तो वे गए थे उनके चरणों में गिरे थे। तो घर पे अर्चा वगैरह रहता है, सेवा करते करते हमारा ऐसी स्थिति आ जाएगी हम भगवान से बात करने लगेंगे। भगवान बात करते हैं जी, मैंने ऐसे ग्रस्त कुछ ऐसे साधु गृहस्थ साधु को देखा है जिनसे उनकी अर्चा वगैरह बात करते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको ये चाहिए, आज प्रसाद नहीं बनाना, ये उनका नाम लेके बता नहीं सकता लेकिन ऐसा है। एक छोटा सा उदाहरण था कि वो एक ही प्रकार का स्वीट वो अपने अच्छा वगैरह को लगा देते, तो बाद में वो गौर ले जाए बोल पड़े हमको रसगुल्ला चाहिए बड़ा वाला, चार हो गए, चार चाहिए, दो इसके लिए दो मेरे लिए, वो लेकर आ जाना। तो तुरंत वो भागे और उन्होंने, तो ये ऐसा भजन परिपक्व हो जाने पर स्थिति आती है, सेवा करते 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 भगवान की अर्चा वगैरह को रोज सुबह नहलाना, उनका अभिषेक करना, उनके शुक्र श्रृंगार करना, इससे हमारा भगवान के संपर्क में रहने से हमारा जो शरीर है पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है और हम उस हमारा वो अधिकार हो जाता है, हम उस स्तर पे आ जाते हैं कि भगवान हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं ना, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं वही उसके मुक्ति का कारण बन जाती है। यदि कृष्ण सेंटर में रहेंगे, अरे घर पर कपड़ा भी नहीं लेकर आते हैं तो उसको भगवान को दिखाना चाहिए, भगवान ये आपके कपड़ा इस तरह भोग लगाते, भगवान को इस तरह से सारी वस्तुएं लगानी चाहिए। जैसे घर पे हम कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो घर पे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको दिखाएंगे ना कि देखिए हमने आज ये खरीद लिया, नया लैपटॉप खरीदा, नया आईपैड खरीदा या नया कुछ खरीदा, फोन नया खरीदा। तो भगवान ऐसी वस्तु को भगवान को अर्पित करना देना चाहिए, भगवान प्रभु आपकी कृपा से ये आया है। तो इस तरह से सारे कार्य भगवान के संबंधित हो जाते हैं भक्तों के सारे कार्य घर में। तो शुद्ध भक्तों की विशेष करके स्वरूप सिद्ध भक्तों की संगति में भगवान के कथाओं को सुनने से, भगवान के भगवान भगवान कथाओं को सुनने से और भेदभाव किए बिना ऐसे साधुओं की सेवा करनी चाहिए, तब उनकी कृपा से हम श्री कृष्ण को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी इतना कहते हुए वेदव्यास से कहते हैं, वेदव्यास से कहते हैं कि चलो वेदव्यास, मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। इस तरह से भगवान वासुदेव आधे में रोक दिए कथा को, पूरा कंप्लीट नहीं किया कि बस साधुओं ने मुझे दीक्षा भगवान का दिव्य ज्ञान दे दिया और वे वहां से चले गए। अब ना वेदव्यास जी की जिज्ञासा जानने के लिए कि ये और इंटरेस्टेड है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने कथा को आधे में रोक दिया अपना जीवन चरित्र। और वेदव्यास जी से कहा कि आप अभी भागवत को लिखना प्रारंभ कीजिए। अभी शाम को नारा वेदव्यास जी पूछेंगे नारद जी से, नारद जी आगे क्या हुआ, आप पार्षद कैसे बने, वो भक्ति विधान चले गए उसके बाद आपने क्या किया, कैसे आपने भगवान को प्राप्त किया, ये सब वेदव्यास जी को नारद जी शाम को बताएंगे।